ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 आज हम श्री कृष्ण भगवान की लीला का आगे बढ़ाते हुए आपको गोवर्धन लीला के पीछे क्या रहस्य है, उसके बाद अन्य देवताओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा, जैसे कि वरुण देव पानी के राजा, पानी के देवता हैं, वो कैसे तृप्त करते हैं, उसके बाद कहीं और भी लीला है। लेकिन शरद ऋतु की लीला, जब भगवान की रास लीला के संबंध में चर्ची जाती है, उसके पीछे पहले परम सत्य का आपको थोड़ा ख्याल देंगे, बाद में लीला के बारे में थोड़ा बताएंगे। सर्व सिद्धांत कृष्ण भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वित्तियो तत्वतः त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति नामेति सुवर्जन। हम सभी जीवात्मा हैं, भगवान की अंश हैं, लेकिन भगवान के तुल्य तो नहीं है। भगवान की छोटी अंश होने के कारण भगवान के गुण समाये हैं, लेकिन न तो हम भगवान की बराबरी कर सकते हैं, न हम भगवान जैसे स्वतंत्र रह सकते हैं। हमारी भावना भगवान से ईर्ष्या करने की है, इसलिए भगवान भगवान के स्थान पे हैं, हम अपने स्थान पे हैं। हमारा स्थान ये भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में काटने को मिला है एक ईर्ष्या के कारण। भगवान अपने आनंद के लिए दूसरों पर आधार नहीं रखते। भगवान दूसरों को समझाए हुए वो समझ नहीं पाते, वो जैसे हैं वो हमें जब कहेंगे और उस ढंग से हम उनको समझने का प्रयत्न करेंगे तो भगवान कहते कि तू समझ रहा है। यदि भगवान ने सारी दुनिया बनाई, सारी सृष्टि का सृजन किया, उसका पालन भी करते हैं और नाश भी करते हैं सिर्फ हमारे लिए ही, क्योंकि हम उनसे विरुद्ध इच्छा करके आए हैं और हम अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। लेकिन ये भौतिक शक्ति जो है, माया है, वो हमें पूरी पूरी पिटाई करती है। कोई है संसार में अपने आप को सुखी कहलाने वाला? कोई नहीं। यदि कोई पागल ही कह सकता कि मैं सुखी हूं। आप देखोगे कि सुख के लिए हम जी रहे हैं, लेकिन सुख कल्पना के बराबर है। दुख है, सब अनुभव कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई सुख की कल्पना करना चाहता है तो दूसरों के दुख के अनुभव से करना चाहता है। जैसे कि आप अपने आप को ज्यादा सुखी समझ रहे हैं, आपके मित्र पंसुक भाई, इनको पांच दुख है, आपको दो दुख है, तो आप समझ रहे हैं कि मुझे तीन दुख कम है इसलिए मैं ज्यादा सुखी हूं। दुख तो है, आपको भी है और उनको भी है। इनको थोड़ा ज्यादा है, आपको दो कम, लेकिन हमारे सुख की कल्पना दुखों की गिनती पर है। सुख कल्पना है, आत्मा स्वयं सुखी होती है, लेकिन ये देह कभी हमें सुखी नहीं रहने देता, क्यों? ये भौतिक प्रकृति का बना है। भौतिक सृष्टि के द्वारा हम जो समझ प्राप्त करते हैं वो झूठी होती है, वो सत्य नहीं होती, क्योंकि भौतिक प्रकृति भी बदलती रहती है। अभी अभी रात हुई है, बदल जाएगी, दिन में पलट जाएगी। भौतिक सृष्टि चलने वाली है, अपने हाथ में रुकेगी नहीं। जो बदलती दुनिया है वो भौतिक कहलाता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की सृष्टि कुछ और है। जो भगवान का अंश है तो भगवान की सृष्टि में आया है। भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक दुनिया बनानी पड़ी और हम अपनी मनमानी कर सकें, लेकिन ज्यादातर हम यहां भी मनमानी नहीं कर पाते हैं। तब भगवान की लीला समझने के लिए भगवान स्वयं हमें उपाय देते हैं कि पहले मुझे जानो तो सही कि मैं कौन हूं। लेकिन मुझे जानने के लिए कम से कम मुझे पुकारना पड़ेगा, इसलिए मेरा नाम आवश्यक है। यदि जो नाम लेता है तो भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, लीला नहीं प्रकट करते हैं। जो नाम लेता है उनको स्वरूप मिलेगा। नाम और स्वरूप की जो सेवा करता है तो उसे भगवान जैसे गुण प्राप्त होंगे, दैवी गुण होते हैं। भगवान की लीलाएं दैवी कहलाती, दिव्यता वाली। हमारे में कोई दिव्यता है? हमारे में कोई दिव्यता नहीं। आत्मा दिव्य है, लेकिन हमारी दिव्यता भौतिकता में छुप गई है, इसलिए भगवान की दिव्यता समझने के लिए भगवान का सुनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं क्योंकि ये भौतिक यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ तेरा शरीर और उसका स्वभाव, और तू अपने आप को ये शरीर मान बैठा है, वो गलत धारणा है। ये अवधारणा पहले तो दूर कर। तो शरीर कैसा है? शरीर किससे बनता है? खुराक से। रोटी खाओ, रोटी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। ये शरीर भी रोटी है किसी की। हाँ, रोटी पर कितना घी चिपकाओगे? हाँ, रोटी की कीमत क्या होती है? कुछ नहीं, सिर्फ वो पोषण करता है। रोटी भी बनी है वनस्पति से, वो भी जीव था। तो जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव पर जीवन का आधार रखता है। तो रोटी से तो रोटी ही बनेगी। क्या हम रोटी हैं? अपना स्वरूप रोटी नहीं है। रोटी में छुपा जो रोटी के पास काम करवा रहा है वो आत्मा। तो आत्मा भगवान का अंश है। ये शरीर भौतिक प्रकृति माया का। हम माया के बने नहीं है, अपना सच्चा स्वरूप भगवान का। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे पुकारो, मेरी शरण में आओ तो मेरी माया को तर जाओगे। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। ये जो भौतिक प्रकृति माया है वो जीत नहीं पाएगी। माया के हाथ में त्रिशूल होता है, तो तीन तापों द्वारा हमें पीड़ित रखती है। सुख का कोई साधन नहीं है माया के पास, वो भ्रमणा है। हमें दुख देने के लिए माया के पास तीन शूल है। एक तो हमारी कम बुद्धि से दुख बुलाते हैं। हाँ, व्यापार में यदि पार्टनर भी हमें धोखा दे सकता है तो दूसरों की परेशानी से हमें भोगतना पड़ता है। मच्छर काट गया तो मलेरिया हो जाएगा। ये आधि भौतिक कहलाती है। लेकिन आधी दैविक दुख भौतिक प्रकृति का प्रकोप है, धरती कंप होना, बाढ़ आनी, हाँ खेरान मैदान कर देता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, यानी दुकाल पड़ता है। मनुष्य का क्या कोई नियंत्रण है उस पर? आजकल का मनुष्य भौतिक प्रगति टेक्नोलॉजी लाकर वो दुर्दशा पैदा कर रहा है। पेट्रोल महंगा करके हम पेट्रोलियम से क्या जी पाएंगे? पेट्रोलियम नहीं खाना बना सकता। कहने का मतलब है कि मनुष्य अपनी दुर्बुद्धि से सर्वनाश के पंथ में जाता। तो भगवान कहते हैं कि ये कलयुग का नियम है, लोग नाशपंथी, उनकी मति चल जाएगी, तो मेरे पास आना और भौतिक प्रकृति को जीतने के लिए तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति मैंने बनाई है, ये इसलिए मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। तो इसलिए जब भगवान अवतार लेकर साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते, अवतार धारण करते हैं, और मनुष्य जैसे बनकर आते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य ही हो गया, क्योंकि वो वहां और अपने में भेद करते हैं। वो कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्तियो तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, दिव्य यानी कि भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। दिव्यता ऐसी चीज है जो हर एक आत्मा की विरासत है, लेकिन ये भौतिकता से वो ढक जाती है और अपने आप को जब शरीर मानने लगता है, अपने आप को शरीर द्वारा पैदा हुआ सारा विस्तार समझ रहा है, तो अहम ममेति, ये मेरा, ये तेरा इत्यादि करने लगता है। तो न तो उसका कुछ है यहां, फिर भी मेरा तेरा करने की भावना उसकी है, तो ये माया का प्रताप है और उसे वो तर नहीं सकता अपने यहां, इसलिए मेरा साथ उसको चाहिए, मेरी मदद चाहिए। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंदिते, जो मेरी शरण में आता है वो ही मेरी माया को तर सकता है। कृष्ण भगवान का ये सारा मंतव्य, सारा उपदेश सूर्य प्रकाश जैसा है, सूर्य प्रकाश सब जगह फैलता है, उसके लिए कोई पाबंदी थोड़ी है कि यहां नहीं पड़ेगा वहां नहीं पड़ेगा। सूर्य प्रकाश में जो प्रकाश के द्वारा वो देख सकने की शक्ति धराता है, तो समझो उसे ज्ञान होगा, जानकारी होगी। लेकिन एक उल्लू होता है, उल्लू यानी आउल घुवर, वो पेड़ की बखोल में दिन भर पड़ा रहता है, वो बाहर ही निकलना नहीं चाहता, तो उसे सूर्य प्रकाश का क्या भान होगा। तब भगवान के उपदेश सूर्य प्रकाश जैसे स्पष्ट है, शाइनिंग, इसलिए मनुष्य को अपने अंधकार वाले अज्ञानता में या जड़ता पूर्वक भगवत तत्व न जानना यह अज्ञानियों का काम, ऐसे पड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं। सूर्य प्रकाश में जो आता है तो अवश्य सूर्य प्रकाश का वो पूरे पूरा फायदा उसको प्राप्त होता है। तो भगवान कहते कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान की सारी लीलाएं मनुष्य जैसा कर्म नहीं, मनुष्य अपना कर्म करता है, कर्म बंधन में फंसता है, भगवान कभी फंसते नहीं। लेकिन भगवान हमें कैसे कर्म करना है वो बताने के लिए कर्म करते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अर्जुन नमाम कर्माणि लिम्बन्ति, मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते, क्योंकि नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल में लगाव नहीं। इतियो माम अभिजानाति, जो इस ढंग से मुझे जानता है तो कर्म भी न लब्ध्यते, कर्म करते हुए भी वो भी बंधन में नहीं पड़ेगा। हमें भगवान बंधन में से छुड़वाना चाहते हैं, ये संसार से मुक्त करवाने के लिए आह्वान दे रहे कि सर्वतर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लेकिन हम न तो उनको ठीक ढंग से जानते हैं तो देखने की तो बात ही कहां। इनका स्वरूप देखने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन जो देखना है वो नहीं देखते, वहां पत्थर की मूर्ति देखते हैं। विश्वास है कि यही भगवान है तो, लेकिन ये विश्वास क्या साबित कर सकते हैं कि यही भगवान है, क्योंकि समझदारी तो भगवान जैसे बताते हैं वैसे ही आएगी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्तियो तत्वतः, तत्व यानी सत्य, भगवान के पीछे सत्य का तो परिचय करो कि क्या सत्य है कि भगवान है। तो ये चीज सारी पहले सीखने से हमें भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जब दिव्य ज्ञान की दृष्टि से हम भगवान की कार्यकलापों जिसे लीला कहते हैं उनको समझने का जब भी प्रयत्न करेंगे, तब भगवान के प्रति सचमुच प्रेम पैदा हो जाएगा। मनुष्य जैसे सामान्य लीला भगवान नहीं करते, ये मनुष्य तो कितना नीच है, हल्का, इसके जीवन में क्या रखा है, ज्यादातर मनुष्य अभूत रहकर क्या पाते हैं, और हर एक मनुष्य क्या अपने परफेक्शन के लिए ट्राई करता है कि जीवन नहीं। तो भगवान की लीलाओं समझने के लिए यहां ये नियम बता दिया आपको कि जो दिव्यता की दृष्टि देखनी है और उसके द्वारा भगवान के कार्यकाल, और यहां तो अभी जो चर्चा होगी गोवर्धन लीला और बाद में वरुण देव के पास से नंद महाराज को छुड़वाना, इन चीजों के पीछे क्या रहस्य है वो जानना होता है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी संक्षिप्त में सारी लीलाओं के पीछे जो रहस्य है वो बता देते हैं। पहले कि भगवान श्री कृष्ण चाहे 2 महीने के बच्चे के रूप में थे या 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने जब रास लीला की थी, महारास, आज उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये सारी लीलाओं में कभी उन्होंने अपनी भगवत्ता छोड़ी नहीं, 2 महीने के भी वो भगवान ही थे और 8 साल के भी वो भगवान ही थे। 8 साल के बच्चे में कोई काम विकार नहीं होता, तो महाराज की जो सारी चर्चा है उसमें विकार से हम कैसे दिखेंगे। यानी कि जब तक हम अपनी शुद्धि नहीं कर पाते हैं तब तक ये लीला समझने में हमारा कोई बलिवार ही नहीं। तो हम आप सबसे विनंती करते हैं कि भगवान की लीला तो आपने सुनी भी होगी, कथाएं बहुत सुनी होगी, सही ना, लेकिन ये तत्व पर विचार करना है कि इसको हम दिव्यता की दृष्टि से कैसे देखें। ये सारे वर्णन को दिव्यता के अभी दिव्यता क्या चीज है, देखो भौतिक सृष्टि 3 गुणों से काम करती है, सत्व रज और तमोगुण। हमारे सात्विक भाव तो कम से कम भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक है। रजोगुणी या तमोगुणी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ज्यादातर रजोगुणी देवताओं के पीछे जाते हैं और तमोगुणी भूत पिशाच के पीछे जाते हैं, जो तांत्रिक इत्यादि कर्मकांड तांत्रिक इत्यादि तमोगुणी, उन लोगों की भावना ही उसमें है। लेकिन भगवान को भजने वाले कम से कम सत्वगुणी होते हैं। लेकिन ये सत्वगुण तो भौतिक गुण है, वहां सब सुख की अपेक्षा करते हैं। लेकिन भगवान ये तीनों गुणों से परे हैं, जिसे आध्यात्मिक या ट्रांसेंडेंटल नेचर कहते हैं। तीन गुणों से ऊपर आत्मा इनकी अंश है, तो आत्मा भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक कहलाती है। आत्मा का स्वभाव भगवान जैसा ही है, क्योंकि इनका अंश है। भगवान सच्चिदानंद कहलाते। सत यानी सनातन हयाती, चित यानी पूरे पूरी जानकारी और आनंद के स्रोत। जब सुख की भावना में आनंद का तत्व आना ही चाहिए, लेकिन ये आनंद अपने हृदय में है, कम पड़ता होगा इसलिए हम ज्यादा चाहते हैं ना। लेकिन कम क्यों पड़ रहा है हमें आनंद? कि हम छोटे हैं, हमने अपना आश्रय जो भगवान थे उनको त्याग दिया है। जब भगवान को त्याग दिया है इसलिए अभी हमें भगवान को समझने की आवश्यकता हो रही है। भगवान समझाते हैं उस ढंग से, हम यदि न समझे तो भगवान की लीला कैसे पता चलेगा। इसलिए ये दिव्यता यानी कि आध्यात्मिक गुण सच्चिदानंद गुणों जब तक हम अपने जीवन में खिलाते नहीं, तब तक हमें भगवान की लीलाओं का रहस्य कभी पता नहीं चलेगा। तो ये तो निवेदन है आपसे, इतना ख्याल रखना कि भगवान कोई मामूली आदमी जैसे लीला नहीं कर रहे। प्रश्न हो तो करना बाद में, शायद थक जाओगे। गोवर्धन लीला में नंद महाराज और उपनंद इत्यादि सभी किसान थे, इसलिए वो समझते थे कि इंद्र देवता जो बरसात का देवता है, हमें उनको साल में एक बार तो यज्ञ करना चाहिए, इनको भोग लगाना चाहिए। तो वो लोग बड़ी तैयारी कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान छोटे बच्चे 7 साल के थे, हाँ वो तो जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी अपनी बाल बुद्धि से उनको प्रश्न करने लगे कि ए पिताजी आप लोग क्या कर रहे हो, कि बेटा हम इंद्र पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कहते कि ये इंद्र कौन होता है, ये पूजा क्यों करनी चाहिए। तो जब कहते हैं कि हमें इंद्र पर आधार रखना पड़ता है, हम लोग किसान हैं, वर्षा से धान पैदा होता है, यदि ये नहीं वर्षा बरसाएगा तब धान कैसे पैदा होगा। तो ये छोटे कृष्ण भगवान पहले लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करते हैं, लॉजिक। कहे पिताजी, बहुत मीठी भाषा में बात करते हैं कि पिता को पता भी नहीं चले कि ये कितना अकलमंद है। वो कह रहे हैं लॉजिकल कि ये कर्म का नियम, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। इस पर इंद्र को क्या लेना देना, आप खेत जोते हैं, यदि आप समझते हैं कि इंद्र देवता है, अरे इसकी जिम्मेदारी है, ये कोई स्वयं थोड़ा भगवान है, किसी के द्वारा वो कर रहा होगा, पानी बरसाना उसका धर्म है, इसकी फर्ज है, ये यदि फर्ज नहीं बजाया था तो उसको कर्म के नियम बांधेंगे। हम अपना कर्म करें, इंद्र को क्या लेना देना है इसमें, यूं कह रहे। फिर भी पिताजी कुछ चले नहीं, हिले नहीं, इसलिए और आर्ग्यूमेंट कर लगे। पिताजी सब अपने अपने भाग्य में जो है वो खाते हैं, ये इंद्र को मारो गोली, ये इंद्र को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम आर्ग्यूमेंट करते हैं, पिताजी ये इंद्र से तो मुझे ये गोवर्धन बड़ा लगता है, देखो ये गोवर्धन में से पानी झरने फूटते हैं इत्यादि, हाँ तो उसे गैया चरती है, घास देता है, हमें शेल्टर देता है, हम क्या क्या नहीं देता है। जिसको देखा ही नहीं है आपने, इंद्र का कहाँ देखा, तो उनके बारे में इतना करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे करें, गोवर्धन तो साक्षात है आपके पास, हम उसकी तलहटी में जी रहे हैं, इनके शेल्टर में जी रहे हैं, ऐसे करो इनको ही भोग चढ़ाओ। कोई न देखा आदमी है उसे भोग चढ़ाने से क्या फायदा। देखो भगवान कहते हैं शास्त्र में गिरिराज गोवर्धन भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि भगवान नारायण, कृष्ण भगवान जब अवतर रहे थे तब तीनों गुणावतार इनके, भगवान श्री कृष्ण के तीन गुणावतार ब्रह्मा विष्णु और महेश कहलाते हैं। ये तीनों ने प्रार्थना की कि भगवान आप ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हो, बाकी क्या सारे अवतार आपके 1000 बार आते हैं, हमें कब मौका मिलेगा, हम भी तो आपके ही तो गुणा अवतार है, आपकी लीला में हमें कुछ योगदान करने दो। तो कृष्ण भगवान ने कहा हाँ महादेव आप नंदेश्वर पर्वत बनना और नंदगांव में, यानी कि हम गोकुल छोड़कर नंदगांव आएंगे तब आपके गोद में खेलेंगे। उसी तरह ब्रह्मा जी को कहा आप बरसाने में जाओ, वहां वृषभानुगढ़ है, वहां राधा रानी आएगी रावल छोड़ के, और नारायण को स्वयं कहा आप गोवर्धन बन जाओ। गोवर्धन की कहानी भी पुराणों में दी गई है। ये विंध्य जो पर्वतों के राजा कहलाते हैं, तो विंध्याचल कि उस समय की सृष्टि बहुत बड़ी थी, तो अगस्त्य मुनि ने सोचा कि मेरे आश्रम के नजदीक विंध्याचल हो तो, और उनकी ताकत बहुत थी, तो विंध्याचल को कहा अरे भैया तेरा छोटा सा एक लड़का मुझे दे दे, यानी कि एक शिखर तो मुझे दे दे, हाँ मेरे आश्रम के पास तेरी भी शोभा बढ़ा दे। तो अगस्त्य मुनि को कहा विंध्याचल ने कि ये एक लड़का है ले जाओ उसे, लेकिन एक शर्त पर, आप उठा के ले जाना लेकिन कहीं रुकना नहीं, रुकोगे तो वो भी रुक जाएगा, बाद में नहीं चल पाएगा। तो अगस्त्य मुनि इनको उठाकर ले चले अपने आश्रम की ओर, लेकिन ब्रज में पसार होते हुए इनको कुदरती हाजत लगी, यानी नेचर्स कॉल आ गया। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा आराम भी हो जाएगा, यानी कि देखो प्रकृति के प्रभाव के वश में ऐसे बड़े बड़े ऋषि भी आ जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हाँ? और भूल जाते हैं कि एक बार मैं जो इसे नीचे रख दूंगा तो उठेगा नहीं। तो इस ढंग से वो ब्रज में आकर उनको नेचर स्कोल लगी, इनको छोड़ के गए, तब से वो वहीं थे। लेकिन अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, हाँ मुझे उल्लू बना दिया, चल चल तू भी छोटा छोटा हो जाएगा, हर रोज एक तिल मात्र तेरी हाइट कम हो जाती। तो गिरिराज जी हाँ गोवर्धन ये भगवान विष्णु का स्वरूप हाँ। तब भगवान ने गोवर्धन की लीला की, देखो विष्णु भगवान के तीन स्वरूप बताए, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। एक विष्णु नहीं है, तीन विष्णु त्रीणी रूपाणी करके शास्त्र ने कह रहा। तो जगत की उत्पत्ति भगवान महाविष्णु द्वारा सिर्फ दृष्टिपात करके होती है, और हरेक ब्रह्मांड में वो गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेशते हैं, जहां उसकी नाभि में से कमल प्रकटता है और ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो वो दूसरे नंबर के विष्णु हो गए हैं। जब ब्रह्मा जी गुणावतार के रूप में आते हैं तो सत्व गुण का संचालन स्वयं खुद क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो क्षीर समुद्र में रहते हैं। तो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु ने कहा कि भगवान हमें भी आपकी लीला में कुछ योगदान देने दो। तो वो गिरिराज गोवर्धन बन गए, गोवर्धन नाम ही दे, गौ पालन के लिए गौ गौ वंश जब जहां बढ़ता है तो गोवर्धन कहलाता। तो इस ढंग से वो गिरिराज जी, तो भगवान स्वयं अपने स्वरूप को उठाते हैं, इंद्र का गर्व का चुरा करते हैं। जब इंद्र ने देखा कि ये तो गोवर्धन की पूजा हो रही है मेरे अलावा, तो रोष उठाकर उसने बारिश बरसाई, तांडव रचा, क्या क्या नहीं किया, और भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पिंकी से सारा गोवर्धन उठा दिया। यदि कोई अपने आप को भगवान कहता है तो उसको कहो जरा पिंकी से गोवर्धन उठा के तो बताओ। तो ये दिव्य कर्म है, ये भौतिक कर्म नहीं। इंद्र का गर्व का खंडन करने के लिए भगवान ने अपने आप अपने को उठाया। देखो कृष्ण भगवान अपने विस्तार को उठा सकते हैं, और भगवान का विस्तार कृष्ण भगवान को नहीं उठा सकता, क्योंकि वो आदि पुरुष है। जब हम ये गोवर्धन की लीला सुनते हैं तो जो 56 भोग इत्यादि भगवान को गोवर्धन जी को ऑफर किया, तो सचमुच नंद महाराज, गोप वृंद, गोपियां सभी देखने लगी कि गोवर्धन के स्वरूप में कृष्ण भगवान खा रहे। तो गिरिराज और भगवान श्री कृष्ण में अभिन्नता है, भेद नहीं है, क्योंकि नारायण भगवान का विस्तार है, विष्णु और तीन विष्णु भगवान का विस्तार, इसलिए वो भगवत तत्व में आते हैं, वो विष्णु तत्व कहलाता है। तत्व यानी सत्य, विष्णु के क्या सत्य है, तो तीन विष्णु है, तीन विष्णु का उद्गम शंकरषण बताया है, शंकरषण का उद्गम कृष्ण बताया है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, एक चतुर्व्यूह होते हैं। तो लोग ना समझ होकर सिर्फ एक भौतिक छोटी सी दुनिया के लिए तीन गुणा अवतार के लिए ही समझते, लेकिन भागवत में ऐसी चर्चा नहीं है। सिर्फ भौतिकता की चर्चा नहीं, आध्यात्मिकता दैवी चर्चा है। इसलिए यहाँ जो जो लीलाएं का वर्णन है वो सभी ऊंची प्रकार की दिव्यता का दर्शन कराती है। मनुष्य ये दिव्यता का दर्शन करके ही अपने ये देहात्म भान को छोड़ेगा और भगवत धाम वापस जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे वैसे नहीं जा सकता। तो इन लीलाओं के पीछे सुखदेव गोस्वामी हमेशा कहते हैं कि ये जो लीलाएं भक्ति पूर्वक अपने आध्यात्मिक भावनाओं दैवी बुद्धि से जो यदि श्रवण करेगा, सुनेगा या समझने का प्रयत्न करेगा, वो भवसागर से छूट जाएगा। तो सुनने सुनने का महत्व है, नहीं तो कथा सुनी सुनी फूटे आकांत तो ये न आयु ब्रह्म ज्ञान। हमें सोचने का मौका चाहिए और ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति द्वारा ही सही ढंग से सोचने का मौका मिलता है। नहीं तो सब जानते हैं, आप लोग धर्म सब जानते हो, लेकिन जानने से फायदा क्या? तो इसी तरह गोवर्धन लीला के पीछे रहस्य है। वरुण देव के पास से छुटने के लिए भगवान ने और नाटक कर दिया। ऐसा हुआ कि गोवर्धन लीला जैसे समाप्त हुई, हाँ सभी आनंद करने लगे। नंद महाराज स्वयं एकादशी का व्रत करते थे, तो एकादशी का पारणा करना होता है दूसरे दिन, तो सूर्योदय से पहले उन्होंने स्नान कर दिया। तो ये वरुण देव के दूत आकर नंद महाराज को यमुना में खींच गए और उनके पास लेकर उनको दंडित करने लगे थे, क्योंकि योग्य समय पर स्नान करना होता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो जरा सूर्योदय हो उसे पहले, यानी कि नंद महाराज की गलती थी। वहां देखा जाए तो नंद महाराज को न देखकर सभी लोग व्याकुल हो गए, लेकिन कृष्ण भगवान तो जानते थे कि ये कहां गए। लेकिन वरुण देव ने ऐसा बहाना बनाया था, भगवान कितनी सारी लीला मेरे तट पे कर रहे हैं लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने नंद महाराज को किडनैप कर दिया और उनको ले आने के लिए कृष्ण बलराम इत्यादि दोनों यमुना में गए और देखा तो नंद महाराज वहां हैं। पानी में तो कोई जी सकता है क्या? यदि मछली जी सकती है तो क्या भगवान नहीं जी सकते? एक मछली भी जी सकती है तुम, लेकिन भगवान दिव्यता से जीते हैं। नंद महाराज इनके पिता ने विशुद्ध भक्त हैं, वो भी दिव्यता से भरे हैं। वरुण देव भी भगवान के भक्त हैं, देवता हैं, और यमुना में इनका वास बताया है। तो लेकिन इनकी इच्छा कि मैं भगवान का दर्शन कब करूं, तो ऐसा त्राटक बनाकर भगवान को बुला रहे हैं कि मैंने नंद महाराज को किडनैप कर दिया, अब छुड़ाने आओ। तो कृष्ण और बलराम दोनों गए। हाँ, इन दोनों को आते देखते हुए वरुण देव इनको क्षमा मांगने लगे कि भगवान को बोलने का भी मौका न दे। कि भगवान आप तो त्रिलोकी नायक हैं, आप राम कृष्ण सारी दुनिया का भार हल्का करने आए हैं। हमें सोचा कि हमें तो कोई योगदान देने का अवसर प्राप्त नहीं है, लेकिन जब जमुना के तट पर आप सारी लीलाएं कर रहे हैं तो हमें भी कुछ दर्शन का मौका मिले। इसलिए हमारे ये जो दूत हैं आपके पिताजी को अजानता से खींच लाए, हमें क्षमा कर देना। तो भगवान कहते हैं कि तू क्षमा का बहाना कर रहा है, वैसे तो हमारे दर्शन का ही अभिलाषी था, चल दर्शन हो गए, तेरी अभिलाषा भी खत्म हो गई, अब हम नंद महाराज को लेकर जाते हैं। तो भगवान की पूजा इत्यादि वरुण देव ने की और नंद महाराज को वापस ले आते हैं। इस समय में शरद ऋतु आ रही है। शरद ऋतु में भगवान की लीला माधुर्य भाव प्रकट करने के लिए और उसकी विशिष्टता जो सर्वोच्च बातें हैं उसके लिए सारा वातावरण प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। जब शरद ऋतु की चंद्रमा पूर्णिमा होती है तो इतनी शीतलता होती है। शरद ऋतु कब आती है, दिवाली के पहले या दिवाली के बाद? दिवाली के बाद, ठीक है,
भारत में दिवाली के बाद,
बाद में
फिजी में दिवाली से पहले,
तो उसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान ने महारास करा था, लेकिन महारास होते पहले भगवान क्या क्या नाटक करते हैं वो समझने की आवश्यकता है। महारास यानी कि ऑर्डिनरी डांस नहीं है। लड़के लड़कियां जो डांस करती हैं डिस्को में या कहीं भी, ऐसा नहीं, जहां जातीय वासना ही बिल्कुल नहीं, ऐसा डांस महारास कहलाता है। लेकिन उसकी पूर्व तैयारी में भगवान स्वयं अपनी वेणु बजाकर इनके सभी भक्तों का और खास करके गोपियों का चित्त हर लेते हैं। जैसी भगवान की ये वेणु बजती है सब गोपियां चाहे अपने बच्चे को दूध पिलाती होगी या अपने पति के साथ होगी या कोई खाना पकाती होगी और कोई भी घर काम कर सब छोड़ के भागती। और उसमें बताया है जो भाग सकी है वो दूसरे को कहती है कि हे सखी, ये वेणुनाद जहां से आ रहा है वहां जो तू जाएगी तो वहां एक काला चोर बैठा है, वो सब कुछ चोर लेगा तुम्हारा। यदि सब कुछ चुरा देना है तभी ही जाना, नहीं तो नहीं जाना। कई गोपियों को अपने परिवार वालों ने टोका कि खबरदार गई तो टांग तोड़ देंगे। तो वो बेचारी नहीं जा पाती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि न जाए तो कुछ नहीं, तुरंत वहां ध्यान लगा दिया और समाधि में पहुंच गई है और अपने ही हृदय में भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा के रूप में बस रहे हैं, इनका ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यंतिम योग, एक योगी जैसी वो लोग बन गई। यानी कि घर वाले चिल्लाते रहे वो तो नहीं जाना दे, नहीं जाने देते, तो यहीं बैठ जाऊंगी। कई गोपियां हताश होकर अपना शरीर त्याग देती है। यदि भगवान से हमें नहीं मिलना है तो ठीक है, हम अपना शरीर को अभी ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मुक्त हो जाएंगी हम। मुक्ति की अवस्था में भी भगवान मिलते हैं। जब भगवान का ध्यान मरते समय जिसको होता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत काले जो भाव को हम स्मरण करके शरीर त्याग करते हैं तो वही भाव को निश्चित रूप से हम पाएंगे। तो ये गोपियां पर जबरदस्ती हो रही है, पाबंदी हो रही है, नहीं जाने देते, तो कहीं ने समाधि लगा दी और कहीं ने अपना शरीर वहीं वहीं त्याग कर दिया और मुक्त हो गई। और सभी एक ही कक्षा में, यानी कि भगवान से मिल रही है अपने अपने ध्यान में। वो मुक्त हुई शरीर छोड़ देती है तो शरीर से थोड़ा मिलता है भगवान को। ये शरीर जैसे कहा गया है ये अपवित्र है, भौतिक तत्वों का बना है, उसे तो त्याग करना भी पड़ता है, नहीं तो उसे पवित्र बनाओ, आध्यात्मिक स्तर पर लाओ। हाँ, जनक इत्यादि महाराज जो सीता माता के पिताजी थे वो विदेही क्यों कहलाते हैं? उन्होंने ऐसी भक्ति करके अपना शरीर भी आध्यात्मिक बनाया था। इनका देह स्थूल देर नहीं रहा। वैसे आत्मा का भी स्वरूप होता है और उनका देह कृष्ण भगवान जैसा ही होता है, लेकिन बहुत छोटा, क्योंकि आत्मा बहुत छोटी होती है। बाल के आगे का भाग सोवा भाग और फिर से एक एक भाग को सोवा भाग करो, एक दस हजारवां भाग बाल के आगे का जो भाग है वो उतनी आत्मा की साइज कठोपनिषद इत्यादि में बताई गई है। तो हम जीव, ये आत्मा कितनी छोटी है, फिर भी हम भगवान की सब जानकारी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि भगवान की अंश भगवान जैसी ही होती है, भगवान नहीं होती है, भगवान जैसी होती है। वी कैन बी गॉडली बट नॉट गॉड। हाँ, तो ये गोपियां मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में भगवान के साथ नित्य लीला करती है। कोई ध्यानावस्थित गतेन मनसा ध्यान लगाकर बैठ जाती है, तो कोई भाग कर जाती है। कहते हैं कि कई गोपियां जो साधना सिद्ध होती है वो भगवान के पास इस देह में पवित्र होकर जाती है, बाकी की गोपियां कोई मुक्ति पाकर भगवान के समक्ष जाती है, तो कोई ध्यानस्थ गति मनसा ध्यान की स्थिति में समाधि अवस्था में पहुंचती है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है। अब जो जो गोपियां भगवान के समक्ष पहुंची वो आई खड़ी हुई सब, अंधेरी रात, चंद्रमा उग रहा था, तब भगवान ने कहा अरे सखियो आप क्यों आई, क्यों अपना काम छोड़कर आई, क्यों अंधेरी रात में? यहां तो जंगली जानवर होते हैं, ये वृंदावन वन है, शेर हैं, भालू हैं, बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो भयानक हैं, आपके जीवन को खतरा है, पागल होकर दौड़ के आ गई, आप लोगों को शर्म नहीं आई? घर बार छोड़ दिया? भगवान डांटने लगे गोपियों को, अकेली स्त्री होकर ऐसा साहस कर दिए, टोना मारते हैं। आपके पति मना करते फिर भी आए, यानी पतिव्रता भी नहीं रही। तो बड़े पिता इत्यादि माता का कहा माना है तो तू सुखी कैसे रहेगी? अभी जा वापस जाओ सभी। तो गोपी हंसने लगी कि ये तो कन्हैया है, मश्करी करता है। लेकिन भगवान सीरियस थे, फिर से कहने लगे, तुमने सुना नहीं? अकेली लड़की रात को और अकेला लड़का रात को, जब मिलते हैं तो बहुत भयानक परिस्थिति पैदा हो जाती है। समाज में दोनों बदनाम होंगे, ये होगा वो होगा। फिर गोपियां मुस्कुराने लगी। तब भगवान ने उनको हृदय को चुरा करने वाले वचन बोलने लगे, सचमुच तुम लोग नाशर्म हो, यानी कि बेशर्म हो, लज्जा भी नहीं आती। मैं सचमुच कहता हूं चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो आपको वैसे भी मरना पड़ेगा, यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। तब गोपियां को दुख लगा कि एक कन्हैया आज कोई दूसरे ही मूड में है। तो देखो कितनी तैयारी, कितनी परीक्षा करते हैं भगवान। एक तो वेणु बजाई है, बुलाया है, जब आई है तब कहते हैं हटियो, भागो यहां से। ये कैसा पत्थर हृदय का है? तो जब गोपियां बोलने लगी, इतना जबरदस्त बोलने लगी गोपियां, नहीं तो आज तक गोपियां बोलती नहीं थी कि हे कृष्ण भगवान तुम कितने निर्दय हो, हम जानते हैं तुम भगवान हो, लेकिन हमें तुम्हारी भगवान की परवाह नहीं है, हमें तो हमारे प्रेम की परवाह है। हम जानते हैं कि आपके प्रेम के लिए हम तलस रही है, और आप हमें ठुकरा रहे हो, वो ठीक नहीं है। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप अपना वचन भी निभाते नहीं। एक तो हमने इतना सारा स्वार्पण कर दिया है कि हम वापस भी नहीं जाना चाहती हैं। हमारे ये सारे भौतिक बंधन काट के हम वैसे आ गई है, और आप इतने क्रूर हो कि हमें फिर से आत्महत्या करने के लिए जाने देंगे? आप इतने क्रूर क्यों हो? आप क्या चाहते हो? जब हमने सर्वस्व अर्पण कर दिया है तो आप चाहते क्या? काफी बोला चाली हुई, काफी। तब भगवान ने देखा कि नहीं, गोपी निस्वार्थ भाव से आई है। ये भक्ति का जो प्रकार है उसे अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति कहते हैं। भगवान के हित के लिए, अपने कोई हित के लिए नहीं, भगवान के हित के लिए ही जो कोई भक्ति करता है तो अहितु की भक्ति कहता है, हेतु बिना की। और अप्रतिहता यानी बिना रुके, निरंतर जब भी आवश्यकता हो दौड़ के चले जाना, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस जिसे कहते हैं, तुरंत। तो गोपियों शादीशुदा थी फिर भी भगवान को पति के रूप में मानती थी कि सच्चा पति ये है, बाकी सब झूठे पति है, काम चलाओ पति है, नंबर गिनने वाले हैं पति। अमेरिका में तो पति देव का भी नंबर यही जीवन में मिल जाता है, कितने नंबर के पति हो। नहीं तो हर जीवन में हम पति बदलते रहते हैं, माता पिता भी बदलते रहते हैं। इस जीवन के माता पिता कितने नंबर के हैं यदि बच्चा पूछेगा तो पिता जवाब नहीं दे पाएगा। पर सचमुच ये है कि जन्म जन्मांतर हम माँ बाप बदलते रहते हैं, अपने पार्टनर बदलते रहते हैं। और अमेरिका में तो हर पांच पांच साल में पार्टनर बदलते हैं। जो भी है, यहां कोई भौतिक भावना नहीं है। भगवान की भक्ति और परकीय रस, स्वकीय रस से भी परकीय रस बहुत ऊंचा है। गोपियां शादीशुदा थी फिर भी भगवान को अपने पति मानती थी, यानी कि वो पतिव्रता भी थी फिर भी भगवान सर्वश्रेष्ठ पतिदेव थे। तब भगवान ने स्वीकारा कि ना अब आप ठीक हो। तो भगवान हर एक के साथ प्रेम भरा बर्ताव करते हैं, गोपियों को संतोष देते हैं, लेकिन यहां कोई जातीय वृत्ति नहीं, इतना विशुद्ध प्रेम होता है, हृदय की भावना, जो आत्मा की प्रसन्नता होती है, देह की प्रसन्नता नहीं, मन की प्रसन्नता नहीं, बुद्धि की प्रसन्नता नहीं, लेकिन आत्मा की प्रसन्नता पर जो भगवान के साथ का व्यवहार है, उसमें वो सनातन प्रेम प्राप्त होता है। ये प्राप्त होते ही हमारे सारे प्रेम की झंखना मिट जाती है। तो भगवान का ऐसा उदाहरण सब सबके लिए है, क्योंकि हर एक के हृदय में वो परमात्मा के रूप में बसे हैं, इसीलिए उनकी ओर हमें मुड़ना, इनका सुनना, इनकी बातों को समझना अपनी फर्ज यानी कि धर्म बन जाता है। तो ये सब होते गोपियों को लगा कि हम कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान मेरे अकेले के साथ इतना गहरा व्यवहार कर रहे हैं। मैं कितनी भाग्यशाली। और हरेक गोपी ऐसे सोचने लगी, हरेक गोपियां ऐसे सोचने लगी। तब भगवान ने देखा कि गोपियां के मन में अपने भाग्य की का गर्व पैदा हो रहा है। अपना भाग्य खुल गया ऐसा गर्व। हरि बोल। हर एक गोपियों को ऐसा लगा कि हमारा भाग्य खुल गया है। तब भगवान ने कहा कि ये तो अहंकार पैदा हो रहा है। तो सचमुच भगवान अदृश्य हो गए इनको छोड़कर। तब वो पछताने लगी सभी। जब भगवान चले गए तो एकाएक चले जाने से उन लोगों का सारा मूड बदल गया और अपने अहंकार पर वो धिक्कार करने लगी कि अरे हमारे में ऐसा क्या हुआ, कौन सा भाव आ गया कि भगवान चले गए। तो भगवान चले जाते हैं, भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं नहीं। जब भगवान स्वयं आप्त काम कहलाते हैं, स्वयं आत्माराम कहलाते हैं, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो पिता होते हम सबकी आवश्यकता पूर्ण करते हैं। तो जब हम भगवान को प्रेम करते हैं और अपना भाग्य पर गर्व करने लगते हैं तो इसका मतलब हम भगवान को क्या ताबेदारी में रखना चाहते हैं? भगवान हमने पा लिया तो भगवान को हमने जीत लिया क्या? तो भगवान के ये मिथ्या अहंकार है, मुझे कमजोर मत समझना, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान का एक छह ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य त्याग है। भगवान का त्याग बहुत आकर्षण करता है, ये किसी की परवाह नहीं करते, इसलिए हमें उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है, वो किसी के पीछे नहीं पड़ते। हाँ, भगवान किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं और भक्तों के पीछे पड़ते नहीं। कभी कभी कहते हैं कि क्यों मैं भक्तों को बहुत सताता हूं, देखो गोपियों को सताया, वेणु बजाकर बुलाया और कहते कि चले जाओ, तो गोपी कहे कि शर्म नहीं आती ना। लेकिन भगवान स्वतंत्र है, स्वराट कह देते, इनको कोई ताबेदारी नहीं स्वीकारनी पड़ती। यदि किसी को भी गर्व छोटा सा आ जाए, अहंकार, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, भगवान मेरे अकेले के साथ इतना अंगत व्यवहार कर रहे हैं, गई काम से, भगवान चले गए और हर एक पछताने लगी और हर एक ने देखा कि उनका स्वयं का क्या गुनाह, क्या कमजोरी थी, अहंकार की कमजोरी। हाँ, तो इस ढंग से बहुत पछताने लगी और भगवान के साथ उसका जैसा व्यवहार था ऐसा व्यवहार करने लगी आपस में, इतनी पागल हो गई। जब भगवान चले जाते हैं तब तो भगवान का विरह में भगवान की तीव्र याद आती है, इतनी सॉलिड याद आती है कि वो पागल होकर भगवान का अनुकरण करने लगती है। भगवान बांसुरी बजाए वो टेढ़े त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम जैसे तीन जगह से टेढ़े उनका अभिनय करती है, कोई एक दूसरे से गले मिलकर गोपियां अंदर अंदर भगवान जैसा व्यवहार करने लगी, कोई तप करने लगी, कोई ये करने लगी, भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए फिर से, भगवान का विरह ऐसा होता है। ये गोपियों ने इतना तीव्र विरह अनुभव किया है। देखो मुफ्त कुछ नहीं होता, भगवत प्राप्ति की कीमत आंसू होती है, विरह, विरह की वेदना में भगवान की याद तीव्र होती है। इसीलिए जब उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान हमने अपनी गलती स्वीकारी है, अब हम दोबारा ऐसी नहीं करेंगे, ऐसा अहंकार हमारे में नहीं आएगा, कृपा करके आप प्रकट हो जाओ, भगवान आते हैं और भगवान ने देखा कि सचमुच ये गोपियां उनकी भगवत्ता को समझ रही हैं। तो भगवान कहते हैं गोपी आपका निस्वार्थ प्रेम देखकर हमें आपको वंदन करने की इच्छा है। मैं आपके प्रेम का बदला नहीं चुका पाता, आपका प्रेम सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट है, सभी उन्नत प्रेम में ऊंचा मां ऊंचा जो प्रेम के वो गोपियों का। सन्यासी लोगों के लिए भी गोपियों के प्रेम के लिए ही इनके चरणों में चलने की आवश्यकता रहती है। रम्या काचिद उपासना ब्रज वधूर्जा कल्पिता। तो भगवान आए, भगवान ने सांत्वना दी, बाद में सब गोपियों को संतोष करने के लिए रास किया और हरेक गोपियों के साथ भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। जितनी गोपियां थी उतना अपना स्वरूप बनाया और महारास किया और गोपियों को पूर्ण रूप से संतोष देकर वो रास क्रीड़ा के बाद जमुना में स्नान करने गए। सभी जमुना के पानी में उनकी थकावट इत्यादि खत्म करके एक दूसरे पर पानी के छिटकारियां करके जल क्रीड़ा कहते हैं वो करके बाद में सुबह हो रही थी तो वहां ये बताया कि ये सारी रास क्रीड़ा ब्रह्मा की रात्रि के दरमियान हुई। ब्रह्मा की रात्रि और सिर्फ सूर्योदय के 1.5 घंटे बाकी थे तब भगवान ने गोपियों को कहा अब जाओगे और सभी चली गई। तो यहां ये बताया जाता है कि ब्रह्मा की रात्रि के दरमियान ये रास क्रीड़ा होती है। तो पता है ये कितनी लंबी रास क्रीड़ा है। ब्रह्मा का दिन को कल्प कहते हैं 12 घंटे को और 12 घंटे की रात्रि समझो। तो ब्रह्मा का 12 घंटा अपने हिसाब से अपना 100 साल में कितना गुना होता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में दिया है और श्रीमद् भागवत में भी कल्प की बात करें। कल्प यानी 12 घंटा। ये 12 घंटा में 1000 बार 4 युगों का आवर्तन होता है। 4 युग कौन कौन से हैं? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग सबसे छोटा युग। कलयुग की अवधि 435,000 साल की। कलयुग से 2 गुना द्वापर होता है तो 870,000 हो गए। कलयुग से 3 गुना त्रेता होता है और 4 गुना सत्ययुग होता है। ये 4 युगों का सम टोटल करें तो एक महायुग कहलाता है। उसको 1000 बार गुनो तो एक कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का 12 घंटा और उसमें 12 घंटे की रात्रि तो उतना ही समय रात्रि का 12 घंटा। लेकिन इसमें 1.5 घंटा कम समझो क्योंकि सूर्योदय पहले ब्रह्म मुहूर्त आता है। भगवान उठते हैं और यहां रात्रि खत्म हो रही है तो ब्रह्मा जी की रात्रि के सिर्फ खत्म होने के लिए इनका 1.5 घंटा बाकी था तब तक का महारास हुआ है। कितने लंबे समय का यह महारास इसीलिए कहलाता है क्योंकि ब्रह्मा की रात्रि में सारे जीव खत्म हो जाते हैं। ये तो मुक्त जीव की जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है भक्ति के द्वारा इन लोगों के लिए भगवान के साथ रास खेला था। ब्रह्मा के जब रात होती है ब्रह्मा स्वयं सो जाते हैं उस दरमियान सारे जीव सो जाते हैं और इतने समय तक सोते रहते हैं। जब ब्रह्मा जगते हैं तो पुनः उसको सृजन करना पड़ते हैं सारे जीवों को अपने अपने शरीर में पुनः बसाना पड़ता है। जैसे हम लोग सोते हैं रात्रि खत्म होती है तो जो हमारी दिनचर्या अगले दिन थी वही पुनः चालू हो जाएगी। उठो, ब्रश करो, टट्टी जाओ, स्नान करो, चाय पी लो और मारो बोले, और बाद में नौकरी पर चले जाओ, ये 8 घंटा रगड़ करके वापस आओ, खाओ पियो सो जाओ, ये अपनी दिनचर्या। तो ब्रह्मा जी की दिनचर्या में भी देखो, बारंबार पैदा करना पड़ता है, बारंबार परेशानी अनुभव करनी पड़ती है, बारंबार। उतना ब्रह्मा जी की आयुष्य 100 साल की है, ये तो सिर्फ 24 घंटे की हुई, दिन की और रात्रि की। ब्रह्मा जी की सारी रात्रि में ये महारास हुआ है। तो ऐसे मुक्त जीव जो जो भगवान के समक्ष जाने वाले थे, जिनके साथ भगवान महाराज कर सकते हैं, तो ये जीव कितने ऊंचे प्रकार के होंगे, पवित्र हुए होंगे, भगवान की भक्ति के अनुसार उन्होंने दिव्यता जब प्राप्त की होगी, तभी तो भगवान के पास जाने का मिलता है, देखने का मिलता है, इनको समझने का मिलता है और इनके साथ लीला करने का मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भक्त्या तु अनन्यया शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मैं जैसा हूं वैसा तेरे सामने दो हाथ सम खड़ा हूं, तू मुझे यथार्थ रूप में जान सकोगे, इतना ही नहीं देख भी सकोगे, इतना ही भी मेरी अंतर्गत लीला में प्रवेश भी कर सकोगे। तो बहुत सारी श्रुतियां थी, रामचंद्र जी जब आए थे तब बहुत सारे मुनियां भी रामचंद्र जी के साथ माधुर्य भाव में अपना व्यवहार करना चाहते थे, मना कर दिया रामचंद्र जी ने कि नहीं नहीं इस अवतार में नहीं संभव है, क्योंकि मैं तो एक पत्नी व्रत धारण करके आया, मैं अपना पूर्ण चरित्र कृष्ण के रूप में बता सकूंगा। तब आप राह देखना, तो ये लोग गोपी बनी है। वेद श्रुति भी भगवान की ये दिव्यता की चर्चा करने वाली क्या ये लोग नहीं चाहती होगी कि क्या हम भी भगवान की लीला में शामिल हो जाएं? तो श्रुतियों ने भी गोपियों का स्वरूप धारण किया था। वेद रुचा साक्षात शक्तियां हैं, तो शक्तियां ही शक्तिमान के साथ व्यवहार कर सकती है। तो ये लीलाएं बहुत दिव्य होती हैं। ये मामूली लड़के लड़की का अफेयर नहीं है, फिल्म में जैसे देखते हैं वैसा नहीं। इसलिए यथार्थ भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के सिद्धांतों को समझना चाहिए, और ये सब गुरु कृपा से प्राप्त होता है। जीवन धन्य बन जाएगा। छोटा सा जीवन में हमें क्या साथ में ले जाना है, क्या साथ में आएगा? भक्ति आएगी और कुछ नहीं आएगा। सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान का जन्म हो रहा है अपनी बेवकूफी दूर करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः, जो दिव्यता की दृष्टि से मुझे, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा जो जानने का प्रयत्न करता है, तो वो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति श्रोतः, इस शरीर को छोड़कर दोबारा भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करेगा, बस अपना आध्यात्मिक शरीर में ही रहेगा और मेरे साथ व्यवहार करेगा, मेरे धाम आएगा। नहीं तो हम लोग मूर्ख के मूर्ख हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं अजानन्त मम भूत महेश्वरं। मूर्ख लोग मुझे, जब मैं मनुष्य जैसे रूप में आता हूं, तो अपने में से एक मान लेता है, जबकि वो मेरा परम भाव जानने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि जो कि मैं महेश हूं, सारे जीवों का नियंता हूं, जो जीवों हम सबको नियंत्रण कर रहे हैं भगवान,
तो हम दुर्बुद्धि से हम इनका नियंत्रण करना चाहते हैं। क्या हमारी क्या हैसियत क्या है? हाँ? हम भगवान को मुट्ठी में हाथ में ले लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़ी सी सिद्धि पा चुके हैं, हाँ, तो वो एक बहुत मशहूर वेणु वादक है, बांसुरी जी बजाता है, प्रोफेशनल है, बहुत नामांकित हुआ है, हाँ। उसको एक बार पूछा गया कि भैया तुम इतनी मधुर बांसुरी बजाते हो वेणु, तो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ? इतना परफेक्शन आपने वेणुनाद में किया है तो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? तो वो कहता है कि मैं कृष्ण भगवान बनूंगा। देखो कोई बन सकता है कृष्ण भगवान? तो लेकिन है ऐसे मूर्ख दुनिया में, बहुत नामांकित हो गए फिर भी। तो आप सभी का धन्यवाद। हाँ, आप सभी भगवान का नाम जप करके अपनी पवित्रता लाने का प्रयत्न करिए, तब भगवान बहुत सुलभ बन जाएंगे। भगवान अपनी दिव्यता द्वारा ही अपना परिचय करवाते हैं। हम जैसा मामूली आदमी बनकर हाँ वो भगवान कहें हाँ तो हमें हंसी आती है, ऐसा तो नहीं करेंगे वो। हमें इनकी आवश्यकता है, उनको हमारी कोई आवश्यकता नहीं। हम सबको उनकी आवश्यकता है। किसी को कोई प्रश्न है? एक प्रश्न माता जी पूछ रही है कि भगवान दूसरे वाजिंत्र क्यों नहीं बजाते हैं, सिर्फ फ्लूट ही क्यों बजाते हैं? क्या जवाब होगा? वेणुनाद, वेणुं कण्वन्तर रविन्द दलायताक्षं बरहावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणु कण्वन्तं, वेणु कण्वन्तं, वेणु नाद, नाद ब्रह्म, भगवान को कोई जबरदस्ती करता है कि वेणु ले लो और दूसरी चीज बजाओ? नहीं, इनका शौक है। लेकिन वेणु क्या चीज है? तो सिर्फ बांस की एक छोटी सी पाइप जैसा है, लेकिन उसमें से गायत्री निकलती है, उसमें से गायत्री निकलती है। ये गायत्री ब्रह्मा जी के कान में जाती है और ब्रह्मा जी को प्रबुद्ध करती है, इनको ज्ञान देती है। नहीं तो ब्रह्मा जी भी अज्ञानी थे। वेणुनाद यानी कि भगवान का ये विशिष्ट स्वरूप है जो किसी भी अवतार में कोई वाजिंत्र लेकर थोड़े आते हैं, वाजिंत्र लेकर थोड़े आते हैं कोई बजाने के लिए, कोई अवतार में आए हथियार लेकर आना पड़ता है, हथियार लेकर आते हैं सारे अवतारों में, कहीं शंख चक्र गदा पद्म हो के भगवान के ये अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के पास वेणु के अलावा कुछ नहीं है। आप चाहती होगी कि भगवान सितार लेकर क्यों नहीं आए या तबला क्यों नहीं बजाते हैं? भगवान की मर्जी है। या भगवान कुछ और चीज ले सकते हैं तो आपका आनंद होगा, या भगवान जो करते हैं उसमें हमें आनंद लेना चाहिए। वेणु से तो विशिष्टता उन्होंने प्राप्त की है। कहते भगवान को कुछ नहीं करना होता है, न तो किसी को कुछ करवाने के लिए कहते हैं, न चतस्य कारणम करणम च विद्यते न चतसमासम अभी अधिकच्य दृश्यते पराश शक्तिर विविधीय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये श्वेताशत्र उपनिषद में कहा है कि भगवान को न तो कुछ करना है न करने का कोई कारण है, न तो किसी के पास कोई करवाने की इनकी भावना है। भगवान की शक्ति विविध प्रकार की है, ये शक्ति भगवान का स्वभाव के अनुसार ऑटोमेटिक काम करती है। जो ज्ञान बल और क्रियाएं के रूप में हमें दिखाई देती है, ये वेणुनाद में इतनी विशिष्टता है कि उसमें ज्ञान भी भरा है, भगवान की बांसुरी में ज्ञान भरा है। गोपियां इनकी सराहना करती हैं, वेणु ने तो कितनी भक्ति की होगी कि भगवान के अधर कमल पर ही रहती है, इतनी प्यारी वेणु जैसी कोई चीज है? अब बताओ कि कौन सा वाजिंत्र भगवान के मुख पर रहता है वेणु के अलावा? तंबूरा भी नहीं रहता, तबले तो दूर ही रहते हैं। वेणु के अलावा कोई वाजिंत्र भगवान के अधर कमल पर नहीं रहता, मुख पर नहीं रहता। जो मुख में जो प्रेम की मिठास होती है वो वेणु ले लेती है, इसलिए गोपियां भी वेणु पर ज्यादा ईर्ष्या करती थी, अरे भगवान इनको तो छोड़ते नहीं। लेकिन ये माधुर्य भाव है, भगवान की मधुरी मां मधुरता बहुत आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। एक वेणु क्या क्या काम नहीं करती, एक वेणु क्या क्या काम नहीं करती, सब प्रकार का। और आनंद चिन्मय रस, आनंद चिन्मय रस, चिन्मय वेणु में से सारे आनंद चिन्मय रस निकलते हैं जो अन्य वाजित्र में नहीं निकलते। कृष्ण भगवान अपनी वेणु से ही तो जाने जाते हैं, बंशीधारी कृष्ण मुरारी। ये भगवान का शोक है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। भगवान अनर्थ वाली तो कोई चीज बताएंगे ही नहीं, भगवान में अनर्थ होते ही नहीं। जिसमें अनर्थ नहीं होते हैं वही हमारा अर्थ कहलाता है। हम तो अनर्थों से भरे हैं इसलिए भगवान हमारी पास नहीं है, उल्टा व्यवहार है। अच्छी वेणु बजा ली इसलिए क्या हम कृष्ण भगवान बन जाएंगे क्या? लेकिन ये ईर्ष्या का भाव है। गोपियों में ईर्ष्या भगवान के प्रेम की तालावली की ईर्ष्या, ये पॉजिटिव ईर्ष्या कहलाती है। हमारे जीवन में नेगेटिव ईर्ष्या होती है, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयत्न करते हैं भौतिकता। वहां कोई गोपी किसी की टांग नहीं खींचती, लेकिन ये भगवान का शोक है, भगवान की प्रियता का साधन है तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, आप तो कहोगी कि भगवान दामोदर महीने में रस्सी से क्यों बांधेंगे, चेन से क्यों नहीं बांधे रस्सी से क्यों बांधे? लोहे की चेन नहीं मिलती थी कहीं बाजार में, तो यशोदा वो भी ला सकती थी। चेन में तो ताला भी लग सकता है, रस्सी में ताला कहां लग सकता है? ये नटखट को काफी शिक्षा दे सकती थी। कहने का मतलब है कि जो लीलाएं हैं और लीलाएं अद्भुत होती हैं और हर एक चीज स्वयं भगवान के साथ तादात्म्यता रखती है, इसलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं भगवान आपके पेट पर जो रस्सी बंधी है वो रस्सी को भी प्रणाम। ये तड़िया नाम समर्चनम बताया गया है, लेकिन रस्सी है जंजीर नहीं है। वेणु है तो वेणु ही रखो और कुछ मत रखना। कभी कभी ऐसे मनोभाव लोगों के होते हैं, पूजा में भी ऐसा कोई कर देते हैं। आपने 2 साल पहले सुना होगा कि वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में बिहारी जी को जीन्स पहनाया, आंख पर गॉगल्स डाले और हाथ में मोबाइल टेलीफोन दिया। भगवान का अपमान कर रहे हैं, लेकिन मूर्खता है। आपने सुना है, यहाँ कोई समाचार नहीं मिले आपको? सुना था ऐसा कोई, लेकिन हकीकत थी। उसी तरह विष्णु भगवान को भी क्षत्रिय लोग कभी कभी ऐसा कुछ देते हैं, शंख चक्र गदा पद्म 4 चीज हाथ में होती है। ते ये राणकपुर की नजदीक राजस्थान में 4 भुजा जी का टेंपल है, चतुर्भुज नारायण जी का, तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म के बजाय एक चीज निकाल करके वहां वो विंचेस्टर राइफल रखते हैं। बड़ी बैरल वाली गन होती है ना, विंचेस्टर राइफल दे देते हैं भगवान ऊपर, उसको सोने के पत्रे से भी मर कर देते हैं, भगवान गोली चलाओ। भगवान को गोली की आवश्यकता क्या है, बंदूक की आवश्यकता क्या है? यदि यदि देखने मात्र से सृजन करते हैं और आंख मीच लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उनको बंदूक चलाने की आवश्यकता क्या है। लेकिन एक मनुष्य अपनी पामर बुद्धि से ऐसा सोचता है। आज जन्माष्टमी नहीं है, दो दिन और बाकी है, आपको 12 बजे उस दिन जगना है, आज नहीं। अभी आपको सब आरती करके प्रसाद का वितरण करना है। बोलो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की
जय। स्वामी महाराज की।